बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस्लाम और औरत के पहलू से जो असूल हम समझ रहे हैं उसमें हम कुरान के जो मखसूस तसव्वुरात हैं उनमें से चंद का आज मुताला करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो अफाकी असूल हैं उसकी रोशनी में हर तहज़ीब अपने कुछ मखसूस इलाकाई, लोकल या पर्टिकुलर तसव्वुरात बनाती है। इस्लाम ने भी कुछ पर्टिकुलर तसव्वुरात दिए हैं। उसमें पहला असूल जो है वो ये है कि हम सारे के सारे इम्तिहान में हैं। जैसे ही हम इम्तिहान का तसव्वुर लेके आते हैं तो कई चीज़ें फिर जो अफाकी असूल हैं या तबई असूल हैं या बायोलॉजी है या नफ्सियात है उनके ऊपर ये हावी हो जाता है। तो कमरा इम्तिहान का तसव्वुर करें कि नालायक हो, लायक हो, एक क्लास के सारे तालिब इल्मों को एक जैसे सवाल दे दिए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि उसको समझ आया था कि नहीं, वो उस लेक्चर में मौजूद था कि नहीं, उसने जो टीचर से सवालात किए थे वो ठीक किए थे कि नहीं, उसका टीचर समझाने वाला था या नहीं समझाने वाला था, बस रट्टा लगवा दिया, कुछ ख्याल नहीं किया जाता, बस पेपर दे दिया जाता। तो जैसे ही हम इम्तिहान में हैं तो ये एक अलग से एक असूल आ जाता है कि अच्छा, अब ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, इम्तिहान में डाल दिया, मुझे पढ़नी ही पढ़नी है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला इसका ख्याल रखते हैं कि मेरी उम्र क्या है, मेरी बायोलॉजी क्या है, सब कुछ ख्याल रखते हैं, जो मैंने असूल बताए उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन एक अहकाम की पूरी फहरिस्त है जो सिर्फ इम्तिहान के लिए आ जाते हैं। वो हो सकता है कि किसी अखलाकी असूल की ज़रूरत ना हो सकता है किसी तहजीबी चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन वो इम्तिहान के लिए आ जाते हैं। ये इस्लाम का एक अलग से पूरा तसव्वुर है जो तमाम इंसानों में यूनिवर्सली मौजूद है, लेकिन मैं उसको इस्लाम की, चूँकि इस्लाम की तालीमात में इसको पेश नज़र रखा जाता है, इसलिए यानी इम्तिहान में पास होने और ना पास होने, दर्जात की बुलंदी के लिए, ज़्यादा सवाब लेने के लिए कुछ चीज़ें रख दी जाती हैं। तो ये एक अलग से असूल है जो उन असूलों के पीछे या उनके ऊपर हावी हो जाता है या उनके पीछे मौजूद रहता है जब हदायत तजवीज़ की जा रही होती हैं या कोई कानून बनाया जा रहा होता है, तो उसके पीछे पेश नज़र होता है इम्तिहान। तो हम जाकर देखेंगे कि ख्वातीन के बहुत से पहलू ऐसे भी आएंगे अहकाम के अंदर जो इम्तिहान की गरज से रखे गए हैं, वो इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे। दूसरा जो इस्लाम की ख़ास चीज़ है वो ख़ानदान का तसव्वुर है। ख़ानदान का तसव्वुर क्या है? कम अज़ कम कुरान से इतनी बात मालूम हो जाती है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि निकाह हो, निकाह के बाद जो औलाद हो, और जब ये वालदैन बूढ़े हों तो इनका ख्याल रखने वाला एक यूनिट सोसाइटी में मौजूद होना चाहिए। ये कुरान मजीद से साफ मालूम होता है। सूरह बनी इसराइल में वालदैन को जिस जगह पे बिठा दिया अल्लाह ताला ने, वो हैरत अंगेज़ है। यानी यहाँ तक बात चली गई है कि अगर मैं वालिद की जो सख्ती है बुढ़ापे में, मैं उनकी तीमारदारी कर रहा हूँ या उनकी खिदमत कर रहा हूँ और वो मुझे डांट रहे हैं, मुसलसल मुझसे नाखुश हैं, मेरी सारी खिदमतों के बावजूद अपने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, बेबसी की वजह से उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है बूढ़े लोगों में, अब वो मुझसे नाखुश हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल में बुरा ख्याल पैदा हो उनके बारे में तो मैं तुम्हें इस सूरत में माफ़ कर दूँगा कि अगर तुम उनके सामने इजहार ना करो उस नागवारी का। यहाँ तक बात चली गई है। ये कुरान का, इस्लाम का एक पर्टिकुलर तसव्वुर है, उसकी ये कदरें हैं कि ख़ानदान को बनकर रहना है, उसमें बच्चों का ख्याल रखने वाला ख़ानदान होना चाहिए, इन बूढ़ों का ख्याल रखने वाला ख़ानदान होना चाहिए, जवानी नौजवानी के सारे अरसों में ख़ानदान उसके समेटने वाला, उसको संभालने वाला, उसको जोड़ के रखने वाला, उसको बिगड़ने से रोकने वाला, यहाँ तक के यतीम बच्चों की जिम्मेदारी वो चचा ताया पर डाल देता है, सोसाइटी के ऊपर डाल देता है, ताकि वो भी इस ख़ानदान का हिस्सा बन जाए। जो अपने माँ बाप से महरूम हो गए हैं वो चचा ताया के हाँ और अपने अजीज़ों के हाँ जाकर ख़ानदान का हिस्सा बन जाए। वो नहीं चाहता कि उनको यतीम खाने में फेंका जाए, नहीं चाहता, वो ख़ानदान के अंदर रखना चाहता है। ये कुरान की एक ख़ास वैल्यू है, कदर है, जिसको वो देखना चाहता है। तो बहुत सारे कवानीन उन तमाम अफाकी असूलों के लिहाज करते हुए कुरान ख़ानदान को बनाने के लिए भी देगा। जब वो ख़ानदान को बनाने के लिए देगा तो मुसावात को कर्टेल करेगा, अदल को कर्टेल करेगा, वो बुढ़ापे में आपकी इज़्ज़त नफ्स को कर्टेल करेगा कि बाप ने अगर डांट दिया है, गलत तरीके से डांट दिया है, तब भी तुम बुरा ना मनाओ, उनको नागवारी का इजहार भी ना करो, तो वो यहाँ से उठेगा और ख़ानदान को अपने हमारे ऊपर हावी कर देगा। तो ख़ानदान को एक बहुत बड़ी कदर के तौर पर अल्लाह ताला चाहते हैं कि माना जाए, और इसकी खातिर कई जगहों पे कानून की, अखलाक की कुर्बानी दी जाए, अपनी कुर्बानी दी जाए, ये वो चाहता है। तो अब जिस तरह से इम्तिहान है, तो इम्तिहान में अब देखिए कि जो इम्तिहान का तसव्वुर है वो मुझे बाप के मुकाबले में नरम कर देगा, बदतमीज़ी ना करने वाला, गुस्ताखी ना करने वाला बना देगा, क्योंकि मैंने इम्तिहान में कामयाब होना है। तो ये चीज़ जो है, ये अल्लाह ताला दूसरी जो बड़ी वैल्यू है जो औरत और मर्द के हवाले से बातें जब चलेंगी तो उसमें पेश नज़र होती है, वो ख़ानदान है। ख़ानदान को बहुत अहमियत दी है अल्लाह ताला ने, जैसा मैंने अर्ज़ किया, और उसके लिए बहुत सारे ज़ाब्ते, निकाह का कानून, वालदैन के हकूक़ वगैरह के ऊपर बड़ी तफसील से बात की है। ज़ौजैन के हकूक़ कहीं ज़र बहस नहीं आते किसी मजहब में, इस्लाम में ज़र बहस आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इससे ख़ानदान ने बनना है, जुड़कर रहना है, टूटने से कैसे बचाना है, टूटना है तो फिर उसको बिखरने से कैसे बचाना है, ये सारा कुछ उन हदायात का हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने कुरान में दे रखी हैं या हमारे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में दे रखी हैं। इसी से फूटने वाला एक और तसव्वुर है ख़ानदान के तसव्वुर से, वो ख़ानदान के अंदर मरातब है, वो ख़ानदान के अंदर मरातब है। मसलन माँ बाप एक मरतबा है, बीवी शौहर ये दो मरतबे हैं, ये ख़ानदान के यूनिट को बनाने के लिए काम आते हैं, इनका भी ख्याल रखा जाता है। शौहर को एक मरतबा देना ज़रूरी है, बीवी को एक मरतबा देना ज़रूरी है, माँ बाप को एक मरतबा देना ज़रूरी है, ताकि ख़ानदान का निज़ाम कायम हो। जैसे हम दफ्तर में बॉस और इस तरह का ताल्लुक बनाते हैं, ठीक घर में भी माँ बाप हायरार्की में सबसे बुलंद हैं, उसके बाद मियाँ बीवी का दर्जा आता है, उसके बाद बच्चों का दर्जा आता है। ये सारा जो निज़ाम है ये भी उन सारे आफाकी असूलों को, मुसावात हो, अदल हो, मेरी आपकी फितरत हो, मेरी आपकी जबिल्लत हो, मेरे अपने अना हो, मेरा तकब्बुर हो, मेरी ज़ात का तहफ़ुज़ हो, इन सब को कुर्बान करना पड़ जाता है मरातब की वजह से। तो मैं एक सहाफ़ी का नाम नहीं ले रहा, उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक दफ़ा मजलिस में बैठे हुए थे, दोस्तों को उन्हें सारे सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, और उसमें सियासतदान बड़े लोग भी आए हुए थे। तो उनके वालिद साहब बूढ़े थे, बाहर निकले और ये सारे लॉन में 200-250 लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक नागवार सी गाली देकर अपने बेटे से कहा जो सहाफ़ी थे, वो मैंने तुम्हें कहा था पानी लेकर आ, तुम पानी लेकर नहीं आए। तो लोग कहते हैं कि वो उठकर गए, पानी देकर आए, तो जब वापस आए तो जहाँ बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा यार कोई बात नहीं, माँ बाप ऐसे करते हैं। कहते हैं ये मेरा फ़ख्र है, माँ बाप ऐसे करते होते हैं, माँ बाप का हक है, उन्होंने मुझे पाला पोसा है। ये तसव्वुर कहाँ से पैदा हुआ है? ये उस हिफ्ज़ मरातब से पैदा हुआ है कि बाप को बाप की निगाह से देखना है। हमारे इस्लाम के अंदर मसलन बाज़ मुल्कों में बताया जाता है कि बाप के ख़िलाफ़ पुलिस को बुलाया जा सकता है, हमारे यहाँ नहीं बुलाया जा सकता, सिवाय इसके कि वो बहुत ही ज़ालिम किस्म का बाप बन जाए, वो एक अलग बात है, वो फिर मोहल्ले वाले ही रोक लेंगे उसको, उसकी बीवी ही रोक लेगी, माँ ही रोक लेगी। लेकिन आम तौर से हम बाप को एक मकाम देते हैं, वो जैसे मैंने पहले भी एक सेशन में अर्ज़ किया था कि वो तजावुज़ कर जाते हैं हम, कि बाज़ औक़ात माँ बाप को ऐसी जगह पे बिठा देते हैं कि वो खुदाई बन जाते हैं, वो भी गलत है, और बाज़ औक़ात इतनी गुस्ताखी कर जाएंगे कि वो हकीर से कीड़े भी महसूस ना हो, ये सारे इंतहाएँ हैं। एक बैलेंस्ड मकाम है वालदैन का जो कुरान मजीद ने दिया है, ख़ास तौर से बुढ़ापे के अंदर। नौजवानी जवानी में कोई मसला नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में जाकर वालदैन को एक ख़ास दर्जा दिया गया है, माँ को एक दर्जा दिया गया है, बाप को एक दर्जा दिया गया है। तो बहुत सारे कवानीन में ये जो मरातब हैं इनकी हिफाजत का भी मामला सामने रखा गया है, कानून देते हुए, हदायत देते हुए, कि कोई ऐसा कानून ना दे दिया जाए। मसलन आप जिहाद देखिए, जिहाद में एक यमन से सहाबी आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो नबी सल्लम ने कहा कि वापस जाओ अपने माँ और बाप तुम्हारे यहाँ, तो उनसे पूछ के आओ कि क्या मैं जिहाद कर सकता हूँ, कहाँ जिहाद है, उस वक्त ज़रूरत भी है, इस्लाम को सिपाहियों की, फ़ौजियों की ज़रूरत थी, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, नहीं अपने वालदैन से पूछ कराओ। चुनाचे कुरान मजीद में मुनाफिकीन ने फिर बहाने बनाने शुरू कर दिए कि वो कहते जी मेरी माँ बूढ़ी है मैं तो नहीं जा सकता, जी मेरा बाप बूढ़ा है मैं तो नहीं जा सकता। तो ये किस वजह से था कि माँ बाप का एक ख़ास मकाम है, एक पोजीशन है, ये मर्तबे मर्दों को औरतों को घर में जो हासिल होते हैं उनको भी कानून में पेश नज़र रखा जाता है। تو اس کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم قرآن مجید کے جو ہدایات ہیں ان کو ترتیب سے لے کر چلیں گے. اگر زندگی رہی تو پھر احادیث میں جو ہدایات ہیں ان کو بھی سمجھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب